समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर। कार्यक्रम आज सवेरे में सुबह के 7:30 बज चुके हैं और रविवार की इस नई सुबह में अब तक के प्रमुख समाचार और बहुत सी रोचक जानकारी लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का और आज सवेरे के इस अंक में मैं हूं निखिल और मेरे साथ में है वैभव। गुड मॉर्निंग वैभव।
हेलो निखिल एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून टू आकाशवाणी गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। एज राइटली सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ हुज बर्थ एनिवर्सरी इज टुडे, दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ अ मैन्स लाइफ हिज लिटिल नेमलेस एंड अनरिमेम्बर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड love. We are here with our forever exciting daily news magazine program Aaj Savere, where in the next half an hour we will bring you the latest in national and international news, some metro city updates, as well as some historical trivia related to this day, that is the 7th of April. So let's begin with the headlines first.
जी हाँ, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान और तेज हो गया है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने देश में फिर से एनडीए की सरकार बनने का भरोसा जताते हुए कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े फैसले लिए जाएंगे। पुष्कर में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के जबलपुर निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड शो के जरिए लोकसभा चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी नेताओं ने कहा है कि वे मंगलवार को बालाघाट में एक रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का रोड शो आज शाम शहीद भगत सिंह चौराहे से शुरू होकर जबलपुर के गोरखपुर इलाके में आदि शंकराचार्य चौराहे पर समाप्त होगा। इन सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। इससे पहले प्रधानमंत्री आज बिहार के नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे। नवादा से भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। जनसभा में भाजपा नेताओं के साथ एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के नेता भी शामिल होंगे।
Defense Minister and senior BJP leader Rajnath Singh has assured the countrymen that the country's borders are completely safe. Addressing a public meeting in Singrauli, Madhya Pradesh, he said that during the Congress government, terrorist incidents used to take place in one state or the other, but the NDA government has strongly stopped them. Targeting the opposition, Rajnath Singh said that the leaders of Congress and its allies intimidate people and create hatred among them. Mr. Singh added that BJP never discriminates on the basis of caste, religion, rather they do politics of justice and humanity. Mr. Singh said that the double-engine government of Madhya Pradesh has an important role in the progress of the country. He mentioned that if we look at the manifesto from the time of Janasangh, BJP has done what it has said. Supporting one nation, one election policy, Mr. Singh said that the party believes that one nation, one election will strengthen the country.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जयपुर में कल एक रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कार्य किया है, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान बनाए, लेकिन भाजपा कांग्रेस के कार्यों का श्रेय ले रही है। श्री खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी गारंटी पूरी की जाएंगी।
The National Investigation Agency NIA raided multiple locations in Uttar Pradesh and Bihar in the CPI Maoist anti-India conspiracy case yesterday. NIA teams carried out searches at the premises of accused and suspected persons at 11 locations in Balia district of Uttar Pradesh and one location in Kaimur district of Bihar in connection with the case registered originally by the Anti-Terror Squad ATS of Uttar Pradesh. The agency in a statement said that several digital devices, including mobile phones, SIM cards and memory cards, along with incriminating documents like pamphlets of the proscribed Naxal outfit, were seized during the searches. NIA had taken over the investigation in the case relating to arrest of 5 persons following the recovery of arms and ammunition, incriminating documents, literature and books of CPI Maoist in Balia, UP, November last year. As per NIA's investigation so far, the banned outfit is making active efforts to re-energize its presence in the northern regional bureau comprising Uttar Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. NIA has been moving aggressively in recent months to steamroll the organization's nefarious plans.
भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित 5 नए सदस्यों ने कल राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। इनमें भाजपा से अशोक राव शंकर राव चौहान और चुन्नीलाल गरासिया, तृणमूल कांग्रेस से सुष्मिता देव और मोहम्मद नदीमुल हक, कांग्रेस से अनिल कुमार यादव मंदादी शामिल हैं।
Indian Coast Guard ship ICGS Veera rescued 9 fishermen off Andhra Pradesh coast and Bay of Bengal on Friday. These fishermen had suffered severe burns after injury. Their boat caught fire and sunk at sea. Ministry of Defence in a statement said that sensing the urgency of the situation, ICGS Veera reached the location within a few hours to provide assistance to the survivors. It added that all 9 survivors were shifted to ICG ship, where they were provided first aid by a medical team. Later, all the injured fishermen were shifted to King George Hospital, Vishakhapatnam, for further treatment.
ब्रिटेन में कैथलीन तूफान आने से कल दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गईं। मौसम कार्यालय द्वारा इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स के कुछ हिस्सों के लिए मौसम का येलो अलर्ट जारी करने के बाद ब्रिटेन के हवाई अड्डों पर 130 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। मौसम विभाग ने तूफान के कल तक जारी रहने की आशंका व्यक्त की है। स्कॉटलैंड में उड़ानों के अलावा रेल तथा नौका सेवाएं भी प्रभावित हैं। इसराइल में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग की है और हमास के साथ चल रहे संघर्ष के बीच देश में जल्द चुनाव करने की मांग रखी है। तल अवीव, कैसरिया और हाइफा की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने इसराइली झंडे लहराते हुए बंधकों की रिहाई का आह्वान किया।
The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a yellow alert in various districts of Kerala today, predicting scorching temperatures and challenging conditions for people from April the 6th to April the 10th. According to the weather department, the maximum temperature is likely to be around 40 degrees Celsius in Kollam and Palakkad districts. The department also stated that the maximum temperature is likely to be 37 degrees in Alappuzha, Pathanamthitta, Kottayam, Ernakulam and Kozhikode districts. Hot and uncomfortable weather is very likely over these districts, except in hilly areas from April the 6th to April the 10th due to high temperature and humidity.
अनुपमा उपाध्याय और थारूर मन्नेपल्ली ने कजाखस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट में सिंगल्स खिताब जीत लिए हैं। महिला वर्ग के फाइनल में अनुपमा ने ईशारानी बरुआ को और पुरुष वर्ग में थारूर ने मलेशिया के सूंग जू वेन को हराया। मिक्स डबल्स में संजय श्रीवत्स और मनीषा की जोड़ी उप विजेता रही। आईपीएल क्रिकेट में कल रात जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। यह मैच दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा।
In hockey, the Indian men's team will face Australia in the second match of the 5-match series in Perth, Australia today. The match is scheduled to start at 2:10 p.m. Indian Standard Time. In the series opener, Australia defeated India 5-1 yesterday. The third match of the series will be played on Wednesday at the same venue.
और श्रोताओं, समय है प्रमुख महानगरों यानी चेन्नई, बेंगलुरू और हैदराबाद और दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता की खबरों को जानने का। तो वैभव, कहां से शुरू कर रहे हैं हम?
वील स्टार्ट द मेट्रो न्यूज सेक्शन फ्रॉम चेन्नई फर्स्ट, वेयर द इंडियन कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर इवैक्यूएटेड अ श्रीलंकन फिशरमैन हु डेवलप्ड अ हार्ट कंडीशन इन मिड सी आफ्टर हिज बोट ड्रिफ्टेड टू द इंडियन वाटर्स ड्यू टू इंजन फेलियर। Released from the Coast Guard said that a distress call was received at the Maritime Rescue Coordination Centre, Colombo, that a boat had set sail from God Bay Fishing Harbour in Sri Lanka with 6 crew members and had ceased all communications. They were informed about a boat which had likely drifted to Indian waters. The Sri Lankan boat was sighted and the technical crew of the Indian Coast Guard had helped them to repair the engine and gave them essential supplies of food and water on the boat. Sri Lankan authorities were intimated about the position of the fishing boat and were requested to tow it back to the base port. The fisherman with the heart condition was airlifted to Chennai and was admitted to a hospital in Chennai. The Indian Coast Guard and the Customs Preventive Unit, along with the Department of Revenue Intelligence, DRI, has seized more than 4 kilograms of foreign origin gold in a mid-sea operation off a Vedhalai coast in Ramanathapuram district. The crude gold bars of different sizes were worth more than rupees 3 crore. 3 men have been arrested in connection with the seizure. On receiving a tip of the smuggling activity from Sri Lanka using a fishing boat, the DRI officers along with Indian Coast Guard personnel took out a surveillance of all fishing boats in Vedhalai coast during the 3rd and 4th of this month. Former Chief Election Commissioner T.S. Krishnamurthy has appealed to voters not to doubt the credibility of the electronic voting machines. It was during his tenure that the voting machines were introduced entirely in 2004 Lok Sabha elections. Speaking at a panel discussion in Chennai, he said that EVM can save time and paper and there will be no invalid votes. Former Chief Election Commissioner N. Gopalaswamy said that all the machines were tested and assigned to different districts and polling stations using the computerized random selection method. Now, Nikhil, moving over to Bengaluru from Chennai, where the heatwave continues in Karnataka with Kalaburgi recording the highest maximum temperature of 43.3 degrees Celsius yesterday, which is 3.6 degrees above normal. Most of the districts in North Karnataka recorded temperatures varying from 38 to 42. Bengaluru reported a maximum temperature of 37.6 degrees, which is the highest recorded in the last 8 years. The Met Department has forecast a rise in maximum temperatures over interior Karnataka during the next 2 days. It has predicted light rain at isolated places over Kodagu and Chikmagalur districts today and at other places after 2 days. Now, in the Metro News section, we go over to Hyderabad, where in Telangana, the police seized a total of 49 crore rupees in the first 3 weeks of the Model Code of Conduct MCC enforcement, aimed at ensuring fair elections ahead of the scheduled parliament elections on May the 13th. Since the initiation of MCC, the Telangana police deployed 466 flying squads, 85 state internal border checkposts and mobile units to crack down on illegal transportation of cash, liquor and other banned items. The seizures include over 31 crore rupees in cash, over 3 crore rupees worth of liquor and narcotics such as ganja, MDMA and other valued at over 5 crore rupees. Additionally, precious metals including gold and silver amounting to 7.6 crore rupees along with other freebies worth over 1.62 crore rupees have been confiscated. The total value of seizures stands at 49.04 crore rupees according to a statement issued by the state police. Well, those were the Metro City updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Nikhil, what's going on in Delhi, Mumbai and Kolkata?
चुनाव की सरगर्मियां दिल्ली में जोर पकड़ रही हैं, तो इस बीच दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा ने एक नई वेबसाइट मोदी ट्रांसफॉर्मिंग भारत की शुरुआत की है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सरकार की पहलों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए युवाओं की भागीदारी पर जोर डाला। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिन तक युवा नेता दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और भाजपा के कार्यकाल में देश में हुए विकास कार्यों के बारे में जनता को जागरूक करेंगे। राजधानी में 25 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हुई हैं। विभिन्न दलों के उम्मीदवार राजधानी में लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इस कड़ी में कल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़ ने राजधानी के मटियाला विधानसभा में 2 बैठकों को संबोधित किया और चुनावी अभियान की शुरूआत की। वहीं पश्चिमी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार कमलजीत सहरावत और जनता के बीच जाकर के भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने वोट करने के लिए अपील की। उन्होंने कल अक्चिनी गांव चौपाल, सीआर पार्क के अलकनंदा अपार्टमेंट और आंदोलन पार्क तथा सावित्री नगर कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस बीच पूर्व उत्तर दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी लोकसभा के गोकलपुरी के संजय कॉलोनी बस्ती में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान किया। आम आदमी पार्टी भी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने कल शाहदरा विधानसभा में जाकर लोगों से वोट देने की अपील की। वहीं दक्षिणी दिल्ली से पार्टी के प्रत्याशी सहीराम पहलवान चुनाव प्रचार के लिए तुगलकाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर कल पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में झंडा फहराया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस बीच दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने कल दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र से ड्रग्स आपूर्ति मामले में शामिल एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिला के पास से करीब 74 ग्राम हेरोइन से भरे 250 पॉलीथीन पैकेट बरामद किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली नगर निगम द्वारा कल वसंत विहार के मॉडल स्कूल में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर डेंगू जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में दक्षिणी जोन के विभिन्न निजी स्कूलों में 100 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। चलते हैं मुंबई की ओर। भाजपा नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल घोषणा करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मौजूदा सांसद श्रीकांत शिंदे मैदान में उतरेंगे। नागपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री फडणवीस ने कहा कि कल्याण में श्रीकांत शिंदे की उम्मीदवारी को लेकर भाजपा की ओर से कोई विरोध नहीं है। इस सीट पर गठबंधन सहयोगी शिवसेना चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में 26 फरवरी को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2024 लागू होने के साथ ही महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने इस अधिनियम के प्रावधानों को समायोजित करने के लिए कई परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है। विशेष रूप से महाराष्ट्र राजपत्रित सिविल सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2024 और समाज कल्याण अधिकारी ग्रुप बी तथा अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण अधिकारी ग्रुप बी की परीक्षाएं जो 19 मई को होने वाली थी उन्हें स्थगित कर दिया गया है। इन परीक्षाओं की संशोधित तिथियां जल्द ही घोषित की जाएंगी। मुंबई के पास ऐतिहासिक वसई किले में अब शाम 7 बजे के बाद प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए किले के चारों ओर सुरक्षा जाल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। किले के क्षेत्र में 450 मीटर तक की सुरक्षा जाल लगाए जा रहे हैं। और हम चलते हैं कोलकाता की तरफ। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में भूपति नगर में कल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एक टीम पर हमला हुआ। टीम वहां तलाशी अभियान के लिए गई थी। दिसंबर 2022 में भूपति नगर में हुए बम विस्फोट के सिलसिले में जब एजेंसी ने तृणमूल कांग्रेस के 2 स्थानीय नेताओं को हिरासत में लेने की कोशिश की तो उन पर हमला किया गया। गिरफ्तार किए गए मनव्रत जाना और बलाई शरण मैती का भूपति नगर बम विस्फोट से सीधा संबंध है। संस्कार भारती आज कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज के साथ बंगाली नववर्ष पर एक कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में भगवान श्रीराम के लिए एक संकलन गीत भी प्रकाशित किया जाएगा। कार्यक्रम में कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह भी आयोजित होंगे। तो ये थी महानगरों से जुड़ी हुई खबरें। और वैभव, मौसम की बात कर लें तो आज दिल्ली में हल्की सी तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बात करें हम कोलकाता की तो आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो अन्य महानगरों जैसे कि चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में आज मौसम कैसा रहेगा वैभव?
Well, Nikhil, as you said, times and weather, they are changing. Chennai is expected to have partly cloudy skies. The minimum temperature is 25 and the maximum will be around 34 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy skies. The minimum temperature is 23 and the maximum will be around 36. Hyderabad is expected to have partly cloudy skies as well. The temperature will hover between a minimum of 24 and a maximum of 40 degrees Celsius.
और अब समय हो चला है इतिहास के पन्नों में झांक करके देखने का। तो आज है 7 अप्रैल और श्रोताओं आपको बता दें कि एक समय था जब माचिस की हर घर में जरूरत हुआ करती थी और 1827 में आज के दिन ही माचिस की बिक्री शुरू की गई थी। ब्रिटेन के रसायन शास्त्र जॉन वॉकर ने इसकी शुरुआत की थी।
In 1506, Saint Francis Xavier, Jesuit priest, Spanish missionary teaching in India and Japan, was born in the Spanish kingdom of Navarre. An 1818 British government imposed the State Prisoners Regulation 3rd, 1818 for detention and deportation of political prisoners and revolutionaries without any trial. This Black Act was in force till 1947 when India got independence.
और श्रोताओं आपको बता दें कि आज का ही वो दिन था जब 1919 में बावेरियन सोवियत गणराज्य की स्थापना की गई थी।
1929, England's Imperial Airways had extended its flight to London-Karachi instead of London-Cahira. It was the first commercial air service in undivided India. In 1934, the father of the nation, Mahatma Gandhi, suspended his campaign of civil disobedience in India. In 1940, Booker T. Washington became the first African-American to be depicted on a United States postage stamp.
और श्रोताओं आपको बता दें कि 1939 में आज के दिन दूसरे विश्व युद्ध में अल्बानिया पर इटली का कब्जा हुआ था और वर्ष 1946 में आज के दिन ही फ्रांस से सीरिया की आजादी का अनुमोदन किया गया था।
1943, the National Football League, NFL, made helmets mandatory. In 1948, the World Health Organization was established by the United Nations. In 1954, United States President Dwight D. Eisenhower gave his domino theory speech during a news conference.
और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज के दिन वर्ष 2000 में ब्राजील से विश्व के सबसे छोटे अखबार यूरोनर का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था.
In 1983, during the STS-6 astronaut Storey Musgrave and Don Peterson performed the first space shuttle spacewalk. STS-6 was deployed the first tracking and data relay satellite, TDRS-1, into orbit. In 1986, Charles Shobhraj and his associate David Hall were nabbed at Mapusa in Goa.
वर्ष 2001 में आज के दिन ही मंगल ग्रह के लिए नासा का ओडिसी यान रवाना हुआ था और आज के दिन ही वर्ष 2008 में दो दिवसीय भारत अफ्रीका पहली शिखर बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई थी.
1987, in a case filed by Saira Banu of Kerala, the Supreme Court held that all the wives, including Muslim women, whose husbands have either married again or taken a mistress, are entitled to legal protection and maintenance.
और आज हम मना रहे हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस. श्रोताओं को बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वावधान में हर साल इसकी स्थापना के दिन पर यानी 7 अप्रैल को यह दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है. इसका मकसद दुनिया भर में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकारों को स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण के लिए प्रेरणा देना है. विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत 1950 से हुई थी और इससे पहले 1948 में 7 अप्रैल को WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी. उसी के उपलक्ष्य में इस दिन को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं.
And in 1997, Bangladesh, India, Nepal and Bhutan finalized the preparations for a new trade bloc called the Growth Quadrangle.
और श्रोताओं, समय हो चला है जानी मानी हस्तियों को याद करने का. तो आपको बता दें कि आज पुण्यतिथि है जानकी वल्लभ शास्त्री की. उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. वे उन थोड़े से कवियों में रहे जिन्हें हिंदी कविता के पाठकों से बहुत मान सम्मान मिला. आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक है. पहले उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखनी शुरू की थी और फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से वे हिंदी में लिखने लगे. आपको बता दें कि जानकी वल्लभ शास्त्री का पहला गीत किसने बांसुरी बजाई बहुत ही लोकप्रिय हुआ था. वे स्वच्छंद धारा के अंतिम कवि थे जो छायावादी अतिशय लाक्षणिक और भावात्मक रहस्य से मुक्त थे. और शास्त्री जी ने कहानियां, काव्य नाटक, आत्मकथा, संस्मरण, उपन्यास तथा आलोचनाएं भी लिखी थी. और आपको बताया जाए कि उनका उपन्यास कालिदास बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ था.
Also remembering on this day, it is the birth anniversary of the great William Wordsworth, an English romantic poet who, with Samuel Taylor Coleridge, helped to launch the Romantic Age in English literature with their joint publication Lyrical Ballets in 1798. Samuel Taylor Coleridge and William Wordsworth both are given the credit for launching the Romantic Age in English literature. Wordsworth's magnum opus is generally considered to be the prelude, a semi-autobiographical poem in his early years. And remembering one of his quotes by William Wordsworth on nature, he said, "Nature never did betray the heart that loved her."
और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज पुण्यतिथि है वेंकटरामा पंडित कृष्णमूर्ति की. वे भारतीय सिने जगत में एक जाना माना नाम है. हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध सिनेमाटोग्राफर रहे हैं और एक कैमरामैन के रूप में उन्होंने बहुत नाम कमाया. उनके कैमरे का जादू, मुस्कुराते होठों की उदासी, आंखों के काले घेरों की स्याह नमी, गुलाबी सर्दियों की गुनगुनाती गर्माहट और किताबों में छुपी चिट्ठियों से उठती प्रेम की खुशबू इन सबको कैद कर सकता था.
तो क्या करूंगी, क्या करूंगी, मैं जाऊं सैया चुड़ा के मैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूं.
और श्रोता, आपको बता दें कि उन्हें चौधरी का चांद साहब, बीवी और गुलाम, प्यासा, कागज के फूल और गुलाम जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है. उन्हें 2008 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया था.
Remembering on this day, the lady that made jazz famous across the globe, nicknamed the Lady Day, we are celebrating the birth anniversary of Billie Holiday, an American jazz and swing music singer nicknamed Lady Day by her friend and music partner Lester Young. Here's one of her most famous track called What a Little Moonlight Can Do.
श्रोताओं, आज ही पुण्यतिथि है केलुचरण महापात्र की। वे एक सच्चे कला प्रेमी थे और ओडिसी नृत्य में उनके योगदान को आज भी सराहा जाता है। इसी योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्म विभूषण के साथ साथ कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने ओडिसी नृत्य को एक बार पुनर्जीवित किया और आपको बता दें कि संयुक्ता पाणिग्रही, कुकुम मोहंती, सोनल मान सिंह, प्रियबंदा मोहंती, मीनाती मिश्रा और यामिनी कृष्णमूर्ति जैसे जाने माने जो नाम हैं, ये सभी केलुचरण महापात्र की शिष्या रही हैं।
Today is the birth anniversary of one of the greatest musicians that the Indian motherland has given to the entire world. We are talking about Bharat Ratna Pandit Ravi Shankar, sometimes spelled as Rabindra Shankar Chaudhary. He was an Indian sitarist and composer, a sitar virtuoso. He became the world's best known expert of North Indian classical music in the second half of the 20th century and influenced many musicians in India and throughout the world. Pandit Ravi Shankar was awarded India's highest civilian honour, the Bharat Ratna, in 1999.
पंडित रविशंकर को 3 ग्रैमी पुरस्कार मिले थे। उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्मभूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि भारतीय संगीत खास तौर पर सितार वादन को पश्चिमी दुनिया के देशों तक पहुंचाने का श्रेय केवल पंडित रविशंकर को ही दिया जाता है। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज जयंती है कश्मीरी लाल जाकिर की। वे अंग्रेजी और शिक्षा में स्नातकोत्तर थे। उन्होंने उर्दू, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में 100 से ज्यादा किताबें लिखी थी। उनकी रचनाएं कई भाषाओं में भी प्रकाशित हुई हैं, जिनका अनुवाद भी किया गया था। और हरियाणा से अपनी शुरुआत की, इसके बाद वो देश विदेश में काफी ऊंचाइयों तक पहुंचे थे। और श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं अभिनेता जितेंद्र का जन्मदिन। वे हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। भारतीय सिनेमा में अपनी नृत्य कला के लिए जाने जाते हैं। उनका वास्तविक नाम है रवि कपूर। अपने फिल्म करियर की शुरुआत उन्होंने 1959 में प्रदर्शित वी शांताराम की फिल्म नौरंग से की थी। आइए सुनते हैं उनकी ये रचना।
तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ, वो चूड़ियाँ हाथों में पहना के चूड़ियाँ, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ, के मौज बंजारा ले गया, के मौज बंजारा ले गया ले गया, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ,
तूने दिल तक तो मेरा ले लिया, हो ले लिया।
श्रोताओं, आपको बता दें कि वर्ष 1967 में रविकांत नागाइश द्वारा निर्देशित जितेंद्र की सुपरहिट फिल्म फर्ज प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म में जितेंद्र ने नृत्य कलाकार की भूमिका निभाई थी और यही वो फिल्म थी जिसके बाद जितेंद्र को जंपिंग जैक का टाइटल दे दिया गया था।
Today is the birth anniversary of Calvin Ron Schaffner, known professionally as Cal Smith. He was an American country musician, most famous for his 1974 hits Country Bumpkin and It's a Time to Pay the Fiddler.
Time to pay the fiddler, and it's sad to know we've danced it all away. But the warm night's disappearing, leaving nothing but the cold, hard light of day.
It is also the birthday of two of the most critically acclaimed and commercially successful actors. One is Jackie Chan and the other is Russell Crowe.
और श्रोताओं, आज ही जन्मदिन है राम गोपाल वर्मा का। वो एक जाने माने निर्देशक और फिल्म निर्माता है। अपनी पढ़ाई के दौरान ही एक अभियांत्रिकी विद्यालय में रहते हुए पहले वीडियो की दुकान के मालिक बने और फिल्म निर्देशन में उन्होंने कदम रखा था। उनकी प्रमुख फिल्मों में सत्या, भूत, सरकार, डरना मना है, डरना जरूरी और एक हसीना थी जैसी कई फिल्मों का नाम आता है।
सपने में मिलती है वो कुड़ी, मेरी सपने में मिलती है।
सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है।
सारा दिन घूंघटे में बंद कुड़िया सी, ओए 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 ओए, सारा दिन घूंघटे में बंद कुड़िया सी, अखियों में खुलती है।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by the morning news in English at 8:15 a.m. Thank you for tuning in. Have a lovely day, you all. Namaskar.